ओम शांति। हम सबके सम्मुख परम श्रद्धेय आदरणीय विमला दीदी जी पहुंच चुके हैं, उनका हम सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आज आपके क्लास का विषय ही है हद से बेहद और उपराम स्थिति कैसे बने। त्याग तपस्या सेवा की प्रतिमूर्ति है आप, विनम्रता धैर्यता की विमला दीदी है आप, रहती हो सदा उपराम, सेवा में गढ़ती हो नए आयाम, दिल से करते हैं आपका स्वागत और सम्मान। इंदौर जोन की आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, जोन के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग आप कराती हैं और साथ ही योग तपस्या भट्टी की क्लासेस जोन के और जोन के बाहर भी जाकर आप योग तपस्या भट्टी कराती रहती हैं। 55 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में आप अपना पूरा जीवन दी हुई हैं। जोन में अनेक सेवा केंद्र खुलने के आप निमित्त बनी और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के संग आप इंदौर में अनेक वीआईपी सेवाएं करती रही। मीडिया विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, वर्तमान समय जबलपुर कटंगा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे आदरणीय विमला दीदी जी से।
ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बहुत ही प्रेरणा देने वाला, उपराम बनाने वाला हमने अभी गीत सुना। अब हमें अपना मुख अपने घर की तरफ, वतन की तरफ करना है। यही थे गीत के बोल। तो बाप दादा ने हम सभी को सभी हदों से निकाल कर बेहद में लाया है। बेहद में जो सुख है, खुशी है और आनंद है, वो हदों में नहीं है। लौकिक दुनिया में तो मनुष्य जब अपने परिवार से, परिवार की समस्याओं से, जिम्मेवारियों से दुखी होकर के, परेशान होकर के संन्यास का मार्ग ले लेते हैं, संन्यासी बन जाते हैं। लेकिन हमारे मीठे बाबा ने हम सभी को, आप सभी को क्या ज्ञान दिया है कि प्रवृत्ति में रहते हुए, अपने जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए बेहद के सन्यासी बनो। परिवार में जब किसी की, मित्र या संबंधी की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु को देखकर शमशानी वैराग तो आ ही जाता है। विचार चलता है एक दिन मेरा भी ऐसा ही अंत होगा। सचमुच सब कुछ छूट जाएगा। सचमुच ये संसार में कोई सार नहीं है, ये असार संसार है। एक दिन सब कुछ छोड़ करके यहां से जाना ही है। ऐसा सोचकर उसको वैराग आ जाता है। पर कौन सा वैराग होता है? वो शमशानी वैराग होता है। दो तीन दिन तक तो वो स्थिति रहती है, उपराम जैसी स्थिति, थोड़ा वैराग जैसी स्थिति, दो चार दिन के बाद फिर वो वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। उनका वो शमशानी वैराग और हमारा हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन का वैराग, ये पूरे जीवन में वैरागी बनकर रहते हैं। कैसे? बाबा ने उसकी युक्ति बताई कि बच्चे अपने कारोबार करो, कर्म करते रहो, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी जिम्मेवारी है, अच्छी तरह से उसका निर्वाह करते रहो, लेकिन अंदर से ओरिजिनल स्थिति में, वो हमारी जो अनादि स्थिति है जहां से हम आए थे और वहां जिस स्थिति में हमको जाना है, वो स्थिति को भूलना नहीं है। ये है बेहद का वैराग। रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी हम आत्मा हैं, वहां से हम आए हैं, हमें अपना पूरा पाठ करके अपने टाइम पर फिर अपने घर लौट कर जाना है। ये ओरिजिनल स्थिति, अनादि अवस्था। बाबा ने खान पान का त्याग, पहने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का त्याग नहीं कराया, सुख सुविधाओं के साधन का भी त्याग नहीं कराया। हमारा त्याग और वैराग्य, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, हमारी स्मृति, देह भान और देह अभिमान का त्याग कराया। तो बेहद का वैराग्य किसे कहेंगे, कौन कौन सी बातों का हमें वैराग्य या त्याग होना चाहिए? बेहद की स्थिति में हम रहें, हदों से हम पार हो जाएं, बेहद में आ जाएं, उसके लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में और धारणा में रखनी है। पहला, नंबर वन, कौन सा त्याग और कौन सा वैराग? मैं और मेरेपन का, यह सबसे बड़ा त्याग। मैं और मेरेपन का त्याग ने ही राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति दिला दी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात रोज हम मुरली में सुनते हैं, बाबा की शिक्षा रोज हमें मिलती है, बाबा रोज सुना सुना के हमें पक्का कराते हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये समझो। लेकिन बाबा की इन बातों को हम कितना फॉलो करते हैं, कितना प्रैक्टिकल में लाते हैं, ये अपने आप से पूछो, अच्छे से पूछो, अपने आप दिल से पूछो कि बाबा की ये शिक्षा मुझे रोज मिलती है, रोज हम सुनते हैं, इसको हम व्यवहार में, कर्म में, बोल में, चाल में, दृष्टि में, वृत्ति में कहां तक हम लाते हैं, वो कहां तक हम लाए हैं, ये देखना। ये बाहर जो भी दिखाई दे रहा है दुनिया में, संसार में, इसको पाने के लिए सारी माया की चकाचौंध है, एक से एक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये जो भी दिख रहा है उसको पाने के लिए आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, जीवन भर दौड़ते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। हुआ है हासिल, इतना जीवन निकला हमारा, इतना हम दौड़ लगाते रहे पाने के लिए, जो बाहर दिखता है वो मिलता नहीं है। दिखता है धरती और आसमान मिल रहे हैं, क्षितिज देखा है ना, जहां लगता है कि दोनों मिल रहे हैं, अब दौड़ लगा करके वहां तक जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वो मिलते हैं क्या? दौड़ते रहो दौड़ते रहो। इसलिए बाहर नहीं देखो, देखना हो तो अपने अंदर देखो। बाहर जो है वो सब सपना है, अंदर जो है वो अपना है। अपने को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है उसको देखो, समय अनुसार बाबा की शिक्षाओं के अनुसार, बाबा ने जो लक्ष्य हमें दिया है उस अनुसार मेरा मन कैसा कहाँ तक बना है, बुद्धि कैसी कहाँ तक वैसी बनी है, मैंने अपने संस्कारों का वैसा परिवर्तन कहाँ तक किया है। अपने अंदर देखो, ये मैं का त्याग, जो मैं जो दुनिया का बाहरी करते हैं ना हम देहभान का, वो मैं का त्याग ऐसे करना है। अब ये मेरा, दूसरा मेरा, मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सब मेरे का परिवर्तन हद से बेहद में करना है, मेरे को तेरे में बदलना है। वैसे तो भक्ति में भी करते रहे और कहते रहे, ये तन बंधन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, पर दिल से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि सचमुच मैंने तेरा कहा है, कर दिया है क्या? ये तन, ये मन, ये धन सचमुच तेरा बना दिया है, तेरा तुझको अर्पण कर दिया है, सच्चाई से, ईमानदारी से, जस्टिसफुल होकर अपने आप को देखो। तन मन धन सब तेरा किया है कि तेरा? आ ही जाता मेरा मेरा। अगर मन को तेरे में लगाया, ये मन तेरा है, तो ये मन मना भाव बनेंगे। मन को देखना है, मन भटकता तो नहीं, मन में हलचल तो नहीं है, मन में कोई खिंचाव तो नहीं है, मन कहीं अटकता तो नहीं है, ये मन को देखो। ऐसा मन जो पूर्ण रूप से इन बुराइयों से बच गया है, पूरा तेरा हो गया है, एक तेरे में ही लगा, कहीं नहीं लगा है, बाबा में, बाबा की सेवा में, बाबा के ज्ञान के चिंतन मनन में, तब तो समझो आप मन मनाभव बन गए। ऐसे ही तन को भी कंचन बनाकर, पूरा पवित्र बनाकर, बाबा की सेवा में मैंने कितना सफल किया है, ये तन के हम ट्रस्टी कितना बनकर रहते हैं ये देखना है, तब समझो मैंने तन भी तेरा बनाया है, तेरा तुझको अर्पण कर दिया है। ये तन बाबा तेरा है, तेरी सेवा के लिए, तेरी याद के लिए और किसी के लिए नहीं है, तब समझो। ऐसे ही धन, मैं धन का कितना अंश बाबा की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में सफल करता हूं या करती हूं, ये धन को देखूं। धन के भी हम ट्रस्टी बन गए हैं, बहुत संग्रह करके, नहीं मेरा है मेरा, इसके लिए रखना, उसके लिए रखना, उसके लिए रखना है, नाती पोतों के लिए रखा, उसके बच्चों के लिए भी रखना है। अगर सचमुच ये तन, ये मन, ये धन जिसको हम मेरा कहते तो उसको हमने तेरा बना दिया, तीनों को हमने तेरे में सफल कर दिया, तभी समझो मेरा ये जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन ये सफल हो गया, तब समझना। इसलिए उपराम बनने के लिए, बेहद में जाने के लिए, अपनी स्थिति बेहद में, बेहद की बनाने के लिए सबसे बड़ा त्याग कौन सा त्याग, कौन सा त्याग जो अभी सुनाया इतना सब, मैं और मेरा, ये मैं और मेरा, ये त्याग ही हमें बाबा का पूरा वर्षा दिलाएगा। ये त्याग, प्रसंग सुनाती हूं। एक व्यक्ति, जीवन भर उसने बड़े पुण्य के काम किए, कोई पाप कर्म नहीं किया, जब वह उसकी मृत्यु हुई तो स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा, तो वहां जो देवदूत थे स्वर्ग के द्वार पे खड़े हुए, वो देवदूत ने उसको अंदर जाने के लिए रोक दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो पूरा अधिकारी हूं स्वर्ग में जाने के, मैंने पूरे जीवन भर श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इतने पुण्य कर्म किए हैं, मेरा तो अधिकार बनता है स्वर्ग में जाने का, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। देवदूत को कहा, देवदूत ने कहा, वो तो ठीक है, अच्छी बात है अपने जीवन में पुण्य कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, पर हमारे यहाँ के कर्म का हिसाब किताब कुछ अलग है, हमें वो देखना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने का जो हिसाब किताब देखा जाता है, हम वो आपका देखेंगे, बताओ। तो वे व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, मैंने पूरे जीवन भर अपने परिवार की बहुत अच्छी सेवा करी, मैं परिवार के सभी सदस्यों के प्रति, चाहे पत्नी रहे, मेरे बच्चे रहे, मेरे माता, मैं सबके साथ वफादार रहा, मैंने सबको पूरे जीवन को खुशियां दी, सबको सुख सुविधाएं दी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने दी, ऐसा कहकर चुप हो गया। देवदूत ने कहा, ठीक है, आपको इसके हम एक नंबर देते हैं। देवदूत ने ये बता दिया, यहां का जो हिसाब किताब के अनुसार आपके 1000 नंबर होने चाहिए, तब आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। जब उसने अपना ये बताया पुण्य कर्म कि मैंने जीवन में ऐसा किया, इतना अच्छा परिवार को इतना सुखी रखा, देवदूत ने उसका सिर्फ एक नंबर दिए। सुना आप सभी ने, ये तो आपकी जिम्मेवारी थी, आपका परिवार के साथ हिसाब किताब था, ये देवदूत ने ऐसा नहीं बोला, मैं आपको बता रही हूं, एक ही नंबर क्यों मिला, ये तो आपका अपना हिस्सा, आपकी जिम्मेवारी थी, तो कौन सी बड़ी बात है। देवदूत ने उसको एक नंबर दिया। ठीक है, उसने आगे और बताया। फिर मैं सरकार के प्रति भी सदा ईमानदार रहा, हमारी गवर्नमेंट थी जो, उसके प्रति ईमानदारी से मैंने वोटिंग करी, वोट दिया। ईमानदारी से मैंने हमेशा इनकम टैक्स चुकाया, कहीं भी इसमें मैंने बेईमानी नहीं करी। देवदूत ने उसको ठीक है, इसके आपके दो नंबर हैं। कितने नंबर मिले उसको? दो नंबर। और आश्चर्य लगा, वो हो, इतना बड़ा मैंने अच्छा कार्य किया, उसके दो ही नंबर। ठीक है, अभी और उसके पास था बताने के लिए। उसने और आगे बताया, मैंने समाज की बहुत सेवा करी, जितने दुखी लोग होते हैं उनको जो चीज चाहिए उनकी मैंने उनको दिया। समाज में जो भी दुखी लोग थे, अभावग्रस्त थे, उनको मैंने सब सुविधाएं दी, उनकी मदद करी। जहां हम रहते थे पूरे मोहल्ले वालों की मैं सेवा करता, जिसको जो जरूरत पड़ती थी मैं तुरंत पहुंच जाता था उसकी सेवा करने के लिए। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाता था, दवाई दिलाता था। मैंने आसपास के लोगों की भी, अपने आसपास वालों की, मित्र संबंधियों की, सबकी सेवा करी, समाज की बहुत सेवा करी। ठीक है, देवदूत का ठीक है, इसके तीन नंबर है आपको। अब उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब बता दिया। और मिला कितना नंबर? कितने नंबर मिले? छह नंबर मिले। चाहिए हजार नंबर। बेचारा वो व्यक्ति तो हैरान हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। और अब सारा उसने सुना दिया जीवन के पुण्य कर्म, और सिर्फ छह नंबर मुझे मिले। एकदम निराश होकर के, दुखी होकर, उदास होकर, एकदम सिर पकड़ करके जमीन पे बैठ गया, घुटने के बल बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सारे जीवन के पुण्य कर्म बता दिए, सिर्फ छह नंबर मुझे मिले। अब प्रभु एक तेरा ही सहारा है, अब मेरा सब कुछ अब तेरा ही है, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। जैसे ही उसने कहा सब कुछ तेरा है, उस देवदूत ने उसको उठाया, कहा तुम्हारे 1000 नंबर पूरे हो गए। हो गए तुम्हारे 1000 नंबर। जब तक वो मेरा मेरा कर रहा था ना, मेरा परिवार तो, मेरा समाज तो, मेरे मित्र संबंधी तो, है ना, जहां तक वो बता रहा था मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने, ये मैं और मेरा नंबर क्या थे? कुछ भी नहीं थे। जहां उसने मेरे को तेरे में बदल दिया, प्रभु तेरा सब कुछ है, तेरे सिवाय कोई नहीं, मेरा तेरा ही एक सहारा है, मेरा सब कुछ अब तेरा ही है, हो गया 1000 नंबर। ये प्रसंग से हमें भी सीखना है, हम भी अपने इस जीवन में देखें, हम मेरे मेरे को और मैं को हम कितना तेरे में बदलते हैं। तू और तेरा, मैं और मेरा नहीं, तू और तेरा, ये हमें बनाता है उपराम, बेहद का वैरागी। ये स्थिति दूसरा वैराग भी दो प्रकार का होता है, एक हद का और एक बेहद का। हद का वैराग जो कोई परिस्थिति के कारण, कोई मजबूरी से हम उसका त्याग करते हैं। जैसे बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है आपको कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है, आपने खटाई का त्याग कर दिया। आपको प्रिय तो बहुत थी पर त्याग कर दिया, क्योंकि आपको ठीक होना है, बीमारी को ठीक करना है। जैसे ही बीमारी ठीक हुई, जैसे परिस्थिति का समय पूरा हुआ, तो त्याग की, त्याग का भी समय पूरा हो गया। तो वास्तव में ये कोई वैराग नहीं है, ये कोई सच्चा वैराग नहीं है जो परिस्थिति वश हम कुछ समय के लिए करते हैं। ऐसे ही जब कोई घर की परिस्थिति ऐसी बन जाती है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत अशांति है, बहुत मन मुटाव है, बहुत आपका अपमान हो रहा है, आपके साथ मारपीट हो रही है, तब आपको उस परिवार से वैराग हो जाता है, ऐसे परिवार में नहीं रहना मुझे, परिवार को छोड़ने का आपका संकल्प आता है, यह कोई सच्चा वैराग नहीं है। परिस्थिति के कारण आपको वैराग आया है। तो सच्चा वैराग कौन सा? सच्चा वैराग जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, समय का ज्ञान, सृष्टि चक्र में ये अंतिम समय चल रहा है, वो थोड़ा सा समय वो भाग्य बनाने के लिए मिला है, और भाग्य बनेगा हमारे त्याग से। जो जो त्याग हमें करना है वो बाबा ने हमको उसकी लिस्ट बता दी है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य तक पहुँचना है। अब तुम्हारे पास इतना ही समय है, समय की हमको इशारा दिया, समय की पहचान दी, बहुत गए, बहुत थोड़ी ही बची, कितना कम समय बचा है, और हमको ऐसा बना, स्वयं परमात्मा आए हैं हमको संपूर्ण बनाकर, विकारों का त्याग कराकर, पवित्र बनाकर घर ले जाने। जब ये हमें ईश्वरी ज्ञान समझ हमको ईश्वर के द्वारा अभी मिली, और ये समझ के आधार पर हमने त्याग किया, वैराग्य आया, ये हमारा है मीठा वैराग्य, ये हमारा है सच्चा त्याग, इसको हम कहते हैं सच्चा त्याग। बाकी परिस्थिति के आपके से अभी भी सब कुछ है, धन है, दौलत है, सुख सुविधा के साथ, लेकिन फिर भी माया है, सब कुछ है सामने है, लेकिन फिर भी सिर्फ बाबा के कहने से, बाबा की शिक्षाओं से हमने ये सब बातों का त्याग किया। यह सच्चा त्याग, यह है सच्चा वैराग, इसको मीठा वैराग या मीठा त्याग भी कहते हैं। छोड़ा कुछ भी नहीं, अंदर से पूरा त्याग, मन बुद्धि संस्कार से पूरा त्याग। इसके बाद में तीसरी पॉइंट, पहला मैं और मेरे का, तू और तेरे में परिवर्तन, दूसरा हद और बेहद का वैराग क्या होता है, हमारा बेहद का वैराग है, हद का नहीं है, कुछ टेम्पररी, कुछ समय का, मजबूरी का नहीं है, और तीसरा है राग और द्वेष से वैराग। ये राग और द्वेष में जानते ना, महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है, दुर्योधन का सत्यानाश किया, राग और वैराग नहीं, राग और द्वेष ने, सॉरी राग और द्वेष ने ही दुर्योधन का ये हाल किया। इसलिए हमारा न तो किसी से द्वेष है, न कोई हमारा दुश्मन है, न हमारा कोई मित्र है। दुश्मन है पांच विकार, हमारे मित्र हैं ये सद्गुण, ये मान के चलो। सद्गुण है हमारे मित्र, दुश्मन हमारे पांच विकार। चौथी पॉइंट, वस्तु और वैभव के आकर्षण से वैराग। कई बार हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चमकीली चीजें देखते हैं, बड़ी आकर्षण करने वाली चीजों को देखते हैं, हमारा मन आकर्षित हो जाता है। हम देख रहे हैं इसकी हमें आवश्यकता नहीं, पहले से हमारे पास बहुत है। ज्वेलरी देखी, अच्छे अच्छे जूते चप्पल देखे, अच्छे अच्छे कपड़े देखे, और भी कुछ भी दूसरे साधन बहुत सुंदर सुंदर देखे, आपके पास पहले से ही रखे हुए हैं, तो कुछ नई डिजाइन के आए हैं, वो ज्यादा सुंदर दिखने वाले आए हैं, हमारा मन ललचा जाता है, हम वहां आकर्षित हो जाते हैं उन वस्तुओं की तरफ और उसको हम ले लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। आवश्यकता नहीं है, बहुत है पहले से ही। तो ये जो वस्तुएं और वैभव हमें आकर्षित करता है, इसका त्याग या इससे वैराग उपराम बनने के लिए जरूरी है। ये जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम चीजों का उपयोग करें, बेवजह हम संग्रह करके नहीं रखें, उसमें फालतू का धन वेस्ट न करें। जीवन में हमें संतुष्ट मणि बन के रहना है। ये संतुष्टता का जो गुण है वो हमारी वैराग वृत्ति को बहुत अच्छी बनाता है, वैरागी बनने में मदद करता है। संतुष्ट मणि का गुण, जो मिल रहा है, जितना मुझे मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा, हम पूर्ण संतुष्ट हैं। और पांचवा कौन सा? चार पॉइंट हुए ये, देह भान और देह अभिमान। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत प्लानिंग बुद्धि हूं, मेरे पास बहुत कलाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी कलाएं हैं मेरे पास में, ये सब है देह अभिमान। बाबा ने कहा कि बच्चे ये देह है विनाशी, विनाशी चीज का अभिमान क्यों करते हो? आत्मा है अविनाशी, अविनाशी का अभिमान रखो तो वो उसके साथ ही रहेगा। आत्मा अभिमानी, हमको आत्मा अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं करना, क्योंकि वह विनाशी, देह विनाशी, उसका अभिमान विनाशी। कहते हैं जो साधु हैं वो ऊपर से भस्मी लगाते हैं, ऊपर शरीर को लगाते हैं भस्मी, और हम अंदर से भस्म होते हैं, अंदर से हम राख होते हैं, सब कुछ भस्म हमारा, खत्म, सब कुछ खत्म, बस पूरा मैं उसका, वो मेरा, अंदर सब खत्म कर दिया हमने। ये हमारी अंदर की भस्मी, ये जो हमारा अंदर का त्याग, ये त्याग जो हमारा है, अंदर का त्याग, ये त्याग ही वो भस्मी बनती है जिस भस्मी से शिव का श्रृंगार होता है। आप सभी को मालूम हो, न भी मालूम हो तो बताती हूँ, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, वहां एक भस्म आरती होती है, बड़ा महत्व है उसका, रात को 12 बजे के बाद होती है। और उस दिन क्या करते हैं, उसमें सभी को परमिशन भी नहीं मिलती है, बहुत विशेष लोगों को ही उसमें आने की परमिशन मिलती है, बड़ा ही महत्व है उसका, उसमें शामिल होना उस आरती में। उस दिन वो क्या करते हैं, शमशान से जो अभी अभी किसी शव को जलाया है, जला के उसका पूरा हुआ, वो ताजी ताजी राख लेकर आते हैं, वो भस्म लेके आते हैं, उस राख से वो शिव का श्रृंगार करते हैं, महाकालेश्वर जो है मूर्ति, और फिर उसमें जो आरती होती है। वास्तव में कौन सा यादगार है, कौन सा यादगार है? शरीर वहां जला, हमने जीते जी अपने आप के अंदर से सब भस्म कर दिया, जीते जी ये भस्म तो हमारी ही हुई ना। और यही हमारे शिव बाबा का श्रृंगार, बाबा के मेरे ऐसे बच्चे मेरा श्रृंगार है, मेरे घर का भी श्रृंगार है। हमें अंदर से सब भस्म करना है, ऊपर से तो सब हम निभा रहे हैं, रह रहे हैं, कोई छोड़ के जंगल में भी नहीं जाना है, ऐसा सन्यासी बनना भी नहीं है। अंदर से हम पूर्ण रूप से भस्म लगा लेते हैं, भस्म लगाकर सन्यासी बन जाते, वो त्याग का भस्म। ये देह भान और देह अभिमान का त्याग, इसमें एक बात और है, बेहद के वैराग वृत्ति बनाने में या उपराम स्थिति बनाने में, वह है दातापन का भाव, जिसमें जितना भी दातापन देने का भाव होता है, मुझे देना है देना है देना है बस, तो दातापन का जो भाव है वो भी हमें उपराम बनने में बहुत मदद करता है। हमारा बाबा देने वाला है ना, दाता है, दाता के बच्चे हम भी, बाबा कहते मास्टर दाता आप भी हो, जैसा हमारा बाबा वैसे हम बाबा के बच्चों को बनना है। एक राजा जीवन भर पुण्यात्मा रहा, बहुत पुण्य के कर्म किए उसने, अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया, बच्चों जैसा पाला, प्रजा में किसी को किसी प्रकार का अभाव नहीं होने दिया, दुख नहीं होने दिया, माने बहुत ही पुण्य आत्मा रही वह राजा। सिर्फ उसके जीवन में एक बार कोई छोटा मोटा पाप हो गया था, एक बार अनजाने समझो जो भी हो, तो मृत्यु के बाद में जब यमदूत उसको लेने आए तो यमदूत उनको ले गए और उनको कहा, महाराज हम आपको जो नरक है, नरक नरक जिसमें जो लोग बहुत तड़पते रहते हैं, नरक की सजा भोगते हैं, हम उसके पास वाले रास्ते से आपको ले जाएंगे, बस यही आपके पाप की सजा है, बस पाप का प्रायश्चित है, आपसे जो एक बार हुआ है ना थोड़ा सा पाप, छोटा मोटा जो भी हुआ है, बाकी तो पूरा जीवन भर आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए, अच्छे किए हैं, पर आपके उस पाप का जो प्रायश्चित है या उसके जो सजा है वो इतनी ही है कि हम आपको नरक के पास वाले रास्ते से इसे लेके जाएंगे स्वर्ग में। ठीक है, जब यमदूत उनको वहां उस रास्ते से ले जा रहे थे तो नरक में पड़े हुए जो प्राणी लोग बहुत जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दर्द से बहुत पुकार रहे थे, बहुत उनको पीड़ाएं हो रही थी, कोई रो रहा था, कोई तड़फ रहा था, उनकी ऐसी जो दर्द भरी आवाज जब उनके कानों में आई तो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देगी, तो बहुत मुझे परेशान करी ये आवाज, तो जल्दी जल्दी चलना शुरू करा कि जल्दी आगे बढ़ जाऊं इस रास्ते से। इतने में ही जो नरक में पड़े हुए जो प्राणी थे, जो सजा भोग रहे थे, उन्होंने पुकार कर कहा, आवाज लगा के कहा, महाराज आपका कल्याण हो, आपके अब कुछ देर यहां खड़े रहो, क्योंकि आपके जो तन से, आपके शरीर से जो छूकर हवा हमारे पास आ रही है उससे हमारी पीड़ा बहुत कम हो रही है, हमें बहुत शीतलता मिल रही है, शीतलता मिल रही है, अब कुछ समय वहां खड़े रहिए आप। जैसे राजा ने ये उनकी आवाज सुनी तो उन्होंने देवदूत को कहा कि यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से इतने सारे प्राणियों का दुख दूर हो रहा है, उनको शीतलता मिल रही है, उनके कष्ट कम हो रहे हैं, तो यहाँ मैं हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा, यही मैं खड़ा रहूंगा। इतने में इंद्र आए उनको लेने के लिए, उन्होंने इंद्र ने उनको कहा, महाराज ये सब है ना, इन्होंने सब ने बहुत पाप किए हैं, ये सब पाप आत्माएं हैं, इनको पापों की सजा मिल रही है। इनको तो पापों की सजा ऐसे मिलेगी कि उन्हें जीवन भर पाप किए हैं। आप चलिए, मैं विमान लेकर आया हूं, आपको स्वर्ग में चलना है। राजा ने कहा, नहीं, मैं ऐसे स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। जब तक इन सबकी पीड़ा दूर नहीं हो जाएगी, तब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। बोले, नहीं, इनकी पीड़ा तो इनको मिलनी ही है, तो ऐसा करता हूं मैं, मेरे जितने भी आपने बहुत पुण्य कर्म किए तो आपके लिए स्वर्ग, इनके जो पुण्य नहीं किए हैं। तो राजा ने कहा, ऐसा है इंद्रदेव, मेरे जितने भी जीवन भर के पुण्य है ने, वो मैं इन सबको दान करता हूँ, मैं इन सबको दान कर देता हूँ ताकि सजाओं से ही मुक्त हो जाए। आज से मैं इनको दान करता हूँ। जैसे ही उसने अपने जीवन भर के सारे पुण्य दान किए कि ये सब दुखियों को मैं दान कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो सारे स्वर्ग में जाने लगे। जो तड़फ रहे थे, तो क्या पुण्य मिल गया उनको राजा का? तो इंद्र ने कहा कि महाराज, अब आप भी चलिए। बोले, मैंने तो अपने सारे पुण्य दान कर दिए हैं, तो मेरे पुण्य तो कुछ बचे नहीं अब, फिर मुझे स्वर्ग में जाने का कैसा अधिकार है? तब इंद्र ने कहा, देने से बढ़ता है। आपने अपने पुण्य दान किए ना उनको, तो आपका पुण्य और बढ़ गया, आपके पुण्य तो बहुत बढ़ गए। अब चलिए, आप स्वर्ग में और ज्यादा श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ा दान कर दिया, पुण्य, अपने पुण्यों का दान। इसलिए देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। बाबा भी कहते हैं, आप जितना जो भी गुण दान करोगे, गुण बढ़ जाएंगे। ज्ञान दान दोगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा, धन दान दोगे तो धन बढ़ जाएगा। देने से हमारा बढ़ता है, इसलिए देने की भावना को कहते दातापन। हमें देना है, देना है, देना है, ये शुभ भावना बाबा हमेशा हमको पक्का कराते। हमारे जो दीदी दादियां हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमेशा क्लासेस करा के यही कहते हैं, कैसी भी आत्मा कोई हो, पाप आत्मा हो, चाहे कैसी भी आपका बुरा चाहने वाली आत्मा हो, आपका अहित करने, आप उसके लिए भी शुभ भावना का दान करो, उसके लिए भी शुभ भावना रखो। तो आपकी, आपके प्रति शुभ भावना बहुत बढ़ जाएगी सभी की। इसलिए हमको उपराम बनने में, बेहद का वैरागी बनाने में, ये दातापन का भाव, देने की भावना, अपना भी त्याग करके जो और देता है, जैसे राजा ने अपना त्याग किया, अपना पुण्य का फल उसने नहीं चाहा कि मुझे मिले, नहीं, इनके कष्ट दूर हो जाए, मेरे पुण्य से ये सब स्वर्ग में चले जाए, ये सब कष्ट से इनको मुक्ति मिल जाए। इसलिए हमारे अंदर ये जो शुभ भावना, देने की भावना, बाबा के रोज सारे विश्व की आत्माओं को आप योग का दान दो, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व में अशांति खत्म हो जाए, सबके जीवन में शांति आ जाए, सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, वो भी भगवान को पहचान जाए, वो भी अपना वर्षा प्राप्त कर ले। बाबा, ये सब आत्माओं के प्रति, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति मेरी ऐसी शुभ भावना है। ऐसे हमको अमृत वेले और संध्या वेले के योग में सारे विश्व के आत्माओं के लिए ऐसा योग का दान देना चाहिए। जैसे मैंने भगवान को पहचाना तो मेरा जीवन कितना अच्छा बन गया, ऐसे ये सब भी परमात्मा को पहचान जाए तो इनका जीवन भी ऐसा ही बन जाए, ये मेरी शुभ भावना है इन सबके प्रति। यह है दातापन का भाव। हमारे जितने भी बड़े रहे हैं, उन्होंने बेहद में रहने के लिए, बेहद की वैराग स्थिति बनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे मंत्र दिए हैं। हमको सबसे मंत्र मिला है, बेहद का वैरागी कैसे बनना है, उपराम वृत्ति वाला कैसे बनना है। मम्मा का कौन सा मंत्र मिला? मम्मा से, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, ये मंत्र मिला मम्मा से। तो हमारे बेहद का वैराग रहेगा, उपराम वृत्ति हो जाएगी। दादी से हमें कौन सा मंत्र मिला है? करण करावन हार करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, वो कराने वाला है। ये हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी का मंत्र हमको मिला है। मैं पन कभी ना आए, कहीं भी ना आए, वो करवा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, करण करावन हार करा रहा है। और हमारी जो दीदी थी मनमोहिनी दीदी, कईयों ने आपने देखा होगा, हमने तो उनकी बहुत पालना ली है, उनका हमको ये बेहद के वैराग्य का कौन सा मंत्र मिला है? अब घर जाना है, ये हमारी दीदी का मंत्र था, अब घर जाना है। और हमारे साकार ब्रह्मा बाबा से हमें कौन सा मंत्र मिला है? जो उनकी अंतिम शिक्षा थी, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी भाव। देखो सभी ने हमको एक मंत्र दिया, एक से नहीं, इन सभी से हमको मंत्र मिला है। यदि ये मंत्रों को हम पक्का कर लें, मंत्र को हम अपने जीवन में व्यवहार में लागू करें, तो हमकी बेहद के वैराग वृत्ति या उपराम स्थिति कितनी अच्छी बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। बाकी हमारी इस वैराग वृत्ति में जो सबसे बड़े विघ्न, ये तीन बातें हैं, तीन बातें जो विघ्न रूप बनते हैं वैराग वृत्ति बनाने में, उपराम बनने में। पहला संग्रह वृत्ति, लोगों को बटोरने की, इकट्ठा करने का शौक होता है, जरूरत नहीं है तो भी इकट्ठा कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, ये संग्रह वृत्ति। दूसरा रीस, कंपटीशन, इसके पास ये है तो मेरे पास कम है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास बड़ी चीज है, मेरे पास छोटी चीज है, हम ऐसे कंपैरिजन और कंपटीशन करते हैं किसी से, ये हमें कभी भी उपराम नहीं बनने देगा। मुझे जो मिल रहा है, हर आत्मा का अपना भाग्य है, हर आत्मा का जीवन में अपना त्याग है, उसको ज्यादा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, मुझे उससे ईर्ष्या क्यों हो? उसके भाग्य से मुझे क्यों ईर्ष्या हो? उसने त्याग भी तो बड़ा किया होगा ना, तब तो भाग्य भी अच्छा बड़ा मिला, मैंने नहीं किया त्याग, पर अब मैं त्याग करूं, अभी तक तो नहीं किया तो नहीं मिला, पर अब तो मैं कर सकती हूं ना, कर सकता हूं ना, अब हम करें ना, अब तो हमको शिक्षा मिल गई है, अब तो हमें ज्ञान मिल गया है, तो आगे का मेरा सारा भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए तीन बातों से हमेशा बचो, संग्रह वृत्ति, रीस और कंपटीशन, कंपैरिजन, जो भी हम कहते हैं, ये हमें उपराम बनने में, बेहद की वैराग वृत्ति बनाने में बहुत बड़े बड़े विघ्न हैं। ये विघ्नों को पूरी तरह से हटाना है। बाकी विनाश के समय तो सभी को वैराग आ जाएगा, विनाश के समय तो सभी को वैराग आ जाएगा, अज्ञानियों को भी आ जाएगा और बाबा के बच्चों को तो खैर आ ही जाएगा, विनाश को देख करके, विनाश की वो सारे सीन देख करके, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ग्रह युद्ध है, सिविल वार है, ये सब दृश्य देख करके तो सभी को वैराग आएगा। तो उस समय हमारा शिक्षक बन जाएगा। समय शिक्षक बना तो हमारे नंबर कम हो गए, हमारे नंबर कम हो गए, आया तो सही वैराग हमें, पर वो सब सीन देख करके हमें आया वैराग, बाबा की शिक्षाओं से वैराग पहले से नहीं आया, तो हमारे नंबर कम हो गए। यदि बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की सीख से, बाबा के दिए हुए ज्ञान से, जो रोज हम मुरली सुनते हैं, ये शिक्षाओं भरी, सावधानी भरी मुरली होती है रोज, उसको सुनकर के, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, लक्ष्य को सामने रख करके, समय की सीमा को देखते हुए कितना कम समय बचा है, कितना विनाश पास में आ गया है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। चलो विनाश तो जब होगा तो होगा, मेरे शरीर का विनाश तो कभी भी हो सकता है ना, उसका तो कल का भी ठिकाना नहीं है, कल का भी निश्चय नहीं है। ये सब बातों को समझकर फिर स्वयं भगवान ये कह रहा है, कोई मनुष्य भी नहीं कह रहा है जिसकी बातों पे हम अविश्वास करें। स्वयं परमात्मा, सत्यवादी परमात्मा हमें कह रहा है, लक्ष्य स्पष्ट बता दिया है, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी सहज बता दिया है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जब बेहद के वैरागी बन जाते हैं, हमें बेहद का वैराग्य आ जाता है, हमारी स्थिति उपराम बन जाती है, ये है सच्चा सच्चा त्याग, ये है सच्चा सच्चा बेहद का वैराग्य। तो अपने आप को जहां से हम आए हैं वापिस वहीं जाने के लिए अपने मन को पूरी तरह से सहज रूप से तैयार कर लेना ही सच्चा बेहद का वैराग्य है। अपने मन को तैयार कर लेना, जैसे एवर रेडी, आज सुबह मुरली में भी सुना ना, एवर रेडी, उसको एवर रेडी भी कहते हैं। कभी भी बुलावा, अचानक भी बुलावा आ गया, हम तैयार हैं। हमने अपने आप को जहां से आए हैं वहां जाने के लिए हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, ऐसा हमको बेहद का त्यागी, बेहद का वैरागी और उपराम वृत्ति बनाने वाला बनना है। ओम शांति। ओम शांति। Yeah।